हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा दाइए दीन की खूबियाँ, क्योंकि देखिए हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे सब का एंड रिजल्ट ये है कि हमारा किरदार क्या है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम सब कुछ करने में, जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए जहनी तौर पे तैयार कब होंगे, जब हम काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को उन चीज़ों पे डाल चुके होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। इम्तिहान देने के लिए वो तालिबे इल्म तैयार होता है जिसने पढ़ा होता है, मेहमानों का मुंतज़िर वो होता है जिसने खाना पका लिया होता है। ऐसी है ना, हम जब किसी चीज़ के लिए जहनी जिस्मानी तौर पे तैयार होते हैं ना, तो फिर हम वेट करने लग जाते हैं। मेरी नज़र में, और ये एक जैम बनाइए, शायद बाद में किसी की सोच इससे उभर जाए, आज हमारे दावत ना देने में एक बहुत बड़ी रुकावट एक तो इल्म का ना होना है, कि इल्म ही नहीं, बात छेड़ ली तो कोई पूछ लेगा तो फिर किस बाजी को फ़ोन करेंगे और किस अंकल को कहेंगे ज़रा इसका सवाल का जवाब दो। ला इल्मी, जहालत कह लीजिए, कम इल्मी कह लीजिए, जो भी आपका लेवल है। और दूसरा, हमारा अमल ना करना, ठीक है। तो हम इस वक्त वो चीज़ें देख रहे हैं जो दावत देने वाला एक कॉम्पोनेंट है, यानी इस काम के तीन बड़े किरदार, नंबर एक दावत देने वाला, दूसरी पैगाम, और तीसरी जिसको दी जा रही है। तो उसमें पहली चीज़ जिसको कदर एक्सप्लेन किया था आपके साथ, वो इखलास था, कि खालिस हो करना भी अल्लाह के लिए और एंड पे लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। दूसरी चीज़ इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो इल्म है। अब देखिए कि सबसे पहले आप साहिब इल्म भी हों और साहिब दलील भी हों। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ की आप दावत दे रहे हैं इसके मुतल्लिक खुद आपको पूरी वाकफियत ही ना हो। सूरह यूसुफ 108 में अल्लाह ताला अपने नबी के नाते से क्या कहते हैं कि इनको कह दें, कुल हाजी ही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदू इल्लाह अला बसीरतिन, मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ। मुफसरीन कहते हैं कि बसीरत से मुराद जहाँ क्या, कॉन्फिडेंस, एतमाद, और यहाँ लफ सिर्फ बसीरत लिख लें। जब तक आपका अपना शरह सदर ना हो, आप दूसरों को नहीं बता सकते इज़ इट ट्रू और नॉट। शक पैदा होंगे, तरद्दुद पैदा होगा, बात हल्की पड़ेगी, वज़न नहीं होगा उसमें। बात में वज़न अमल का होता है। एक आलिम थे तो बहुत ऊंची बात करते थे गुस्से में, और कभी तो फिर वो कहते थे हम क्यों ना ऊंचा बोले, क्योंकि हमारे पास अमल का वज़न है। उनके अपने अंदाज की ये बात बता रही हूँ, लेकिन ये बात सच है। आप अपने बच्चे को भी उस बात पर नहीं टोक सकते जो आप खुद नहीं कर पाते। तो वज़न आपके इल्म का भी हो, और इल्म जो है ना, ये बंदे की पर्सनैलिटी को ऐसे चमकाता है जैसे अंधेरी रात को सितारे चमकाते हैं। तो इल्म और बसीरत के सिवा कोई चारा नहीं, और इल्म फ़र्ज़ भी है। जब भी किसी मौजू पे आप खुद बात करें और पूरी बात ना कर सके, तो बेहतर है कि आप जितनी बात पता है वो बता दें और बाकी के लिए आगे रेफ़र कर दें। एतराज़ कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर उस मौजू को पूरा डिस्कस करें। और सबसे अच्छी बात, किसी ने अगर वो बात आपसे अच्छी कही भी है, आप उसकी बात सुनवा दें। लोगों को कहें ना सुन लो, 100 में से 5 सुनेंगे, तो आप वहाँ 100 को बैठ के सुनाएंगे तो 100 में से 5 नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन 95 सुन रहे होंगे, आपका दर पूरा होगा, ठीक है। अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार ये बात कही है, आप पढ़ें सूरत अलनाम में तो कई दफ़ा ये बात है कि अल्लाह पर वो बात करते हो जो तुम नहीं जानते, अल्लाह पर वो डालते हो जो झूठ है। नहीं, झूठी बात नहीं करनी, ना अल्लाह पे ना रसूल पे। बाद लोग हदीस कहते हैं, वो हदीस नहीं होती। कई लोग बातों में जोश बोलते हैं, मैं कहती एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, ये हदीस नहीं है। वो हाँ मुझे पता है सही। कभी कुरान की आयत को हदीस कह देंगे, कच्चा पक्का इल्म ना दें, अधूरी बात ना करें। आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बड़ा काम जो हुआ था, लोगों ने हदीसें घड़ घड़ के किताबों में डाली थी, मुहद्दिसीन ने ऐसे चुन चुन के वो हदीसें निकाली जैसे आप चावलों में से कंकर निकालते हैं। तो ये एक पूरा इल्म है इसके बारे में, बस इतना समझिए, गहरा इल्म भी लीजिए और याद रखिए कि इल्म की फिर दो किस्में हैं। एक ज़ाहरी इल्म है, ज़ाहरी इल्म में अगर हम अपने फील्ड पे ले लें कुरान सुन्नत में, तो तजवीद अच्छी हो, आपका कुरानी आयतों को पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो। फिर इसी तरह से जो भी इल्म है आपकी, कह लीजिए ग्रामर पे कम अज़ कम इतनी ग्रिप तो हो कि आप गलती ना करें। इतनी कुरान में गलतियाँ बड़ी बड़ी हो सकती हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और वो क्या की बात क्या बन जाएगी, ठीक है। तो इल्म की जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, फ़िक्र पे बात करें तो फ़िक्र का इल्म हो, अकीदे पे बात करें तो अकीदे का इल्म हो, और अगर आप मामलात की बात करें तो पूरे मामलात आपके उसके मुताबिक आपको पता हो। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास भी नहीं बता देने चाहिए, हाँ मेरा ख्याल आप कर लें, एहतियात का तकाज़े आप कर लें, ये भी दुरुस्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक इल्म होता है जो आप अंदर उतारते हैं, बातिनी इल्म होता है, इसको मैं एक दूसरा नाम दे देती हूँ, फहम और फरासत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से बचो, डरो, क्योंकि फ़इन्नहु यरा, ये देख लेता है अल्लाह की बुरहान के साथ। जिस तरह किसी शहर में आप जितना पुराना होते जाते हैं ना, आपको उसकी प्लस माइनस नज़र आती हैं। कुरान के अंदर गौर व फिक्र, हौज, हदीस, सीरत, इसको आप जितना गहरा पढ़ते जाते हैं, पुराना इल्म होता जाता है ना, इल्म उतना नरम होता है। ये भी जुमला लिख लीजिए। कई लोग नए नए इल्म देने के शौक़ में लोगों को कड़ कड़ करता अकड़ा हुआ दीन देकर आते हैं। मसलन देखिए, जितना इल्म पुराना होगा ना, पुराने कपड़े की तरह, इस्तेमाल शुदा कपड़े की तरह नरम होगा। आपके पास आज भी यकीनन 3 साल पुराना कोई लॉन का सूट तो होगा। मेरे पास भी है, मैं नहीं देती किसी को, पहन के मज़ा आता है। नया कपड़ा आप पहनते हैं दूसरों के लिए कि अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या होता है? अकड़ा हुआ, चुभ। बताइए, जो शादियाँ वाले कपड़े अंदर से चुभ रहे होते हैं, बाहर से अब बच्चों को उठाएं तो बच्चे भी रो रहे होते हैं, है ना? नए कपड़े की अकड़ होती है। जिस तरह इल्म नया होता है ना, इस तरह इल्म वाले में अकड़ आती है। मैंने देखा जो लोग तजवीद सीखने लगते हैं ना, तो वो करते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो अंदर से मुखारत सही कर रहे होते हैं, कैफ हालु का है, ये टोन बनती है। अरे एक सिंपल है अस्सलाम वालेकुम, कोई ऑडियो चले और वो करे अस्सलाम वालेकुम, मैं बंद कर देती हूँ। पता नहीं कुछ तसन्नो लगता है, एक बड़ापन लगता है। ठीक है, अब नया इल्म जब आपके अंदर आएगा ना, तो आप उसको जज्ब नहीं करेंगे। तो फिर अगली चीज़ नोट कीजिएगा, इल्म को जज्ब करने के लिए जो चीज़ है वो हिल्म है। हिल्म के बगैर अगर इल्म आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बदतरीन पर्सनैलिटी कोई नहीं है। मुतकब्बिर, बस दीन के नाम पर बाहर लोगों में नजर आने वाले लोग, अकड़ी हुई गर्दने, अस्तग़फिरुल्लाह, दस्तार बंदियां और साबके और लाख के। याद रखिए, हिल्म लाजिम है, और हिल्म को हलीम से याद कर ले, नरम नरम दिल, हलीम तबा, मुतहम्मिल, मिजाज अच्छा हो, साबिर हो, और इसमें नबी सल्लम की मिसाल रख ले। आप अमली नमूना थे। मसलन क्या चीजें इसकी ऑपोजिट है? नंबर एक, जल्दबाजी, हर वक्त जल्दी। आप जरा सोचिए, आप किस स्पीड से बोलती हैं। अब देखिए, मुझे बुरा लगता है, मुझे ये टोन ना अपनी पसंद है ना किसी की, लेकिन जो मैं अब बोल रही हूँ, मुझे भी पता है वक्त थोड़ा होता है, मैं और तेज़ बोलूँ, मैं ज़रा सी स्पीड तेज़ करूँ, आपके कानों पे बोझ पड़ेगा, तर 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 तर। तो इस पे चेक कीजिए, आपकी बात बोलने और अगले के सुनने के बीच में बिल्कुल एक वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। बोले भी कितना ऊंची कि जितना इस कमरे की ज़रूरत है, ना मिन 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 और ना बहुत गला फाड़ना। टोन चुभती भी ना हो, अकड़ी भी ना हो। बात कहते हैं हम दीन वाले, ये मुनाफिक, ये फला, यानी बाज लोग जरा सा दीन सीख लेते हैं ना, तो दूसरों को लट डाउन। आप कहते हैं हम कुरानी बहने, दीनी बहने, जमाती बहने, ये निकाल दीजिए लफ्ज अपनी डिक्शनरियों से, इससे तकबर आता है। हाँ जी, ये दीनदार हैं तो फिर ये बेदीन होंगे, राइट? फिर इस तरह आप देखिए कि बोलने में आप सब अपना टोन चेक करें। आपको नूरुल्लाह नूर में पूरी एक्टिविटी कराई जाती है, इसमें बोलना कैसे है। अब मैं बोलूं कैसे हैं आप, सोने को दिल किया, बैठिए ना, कैसी हैं आप, तकल्लुफ है मेरी जुबान में, और मैं बोलूं सीधे होके बैठे, सख्ती है मेरी जुबान में। देखिए वही बात, डॉक्टर के हाथ और उंगलियां, इंजेक्शन लगाते वक्त, ऑपरेट करते वक्त, और दाई दीन की जुबान, गला नहीं फाड़ना, जुबान से बात कीजिए। आपके हिल्म का पता आपके बोलने से होगा। और मैं बिल्कुल सुला दूं, एक टोन में बोलती जाऊं, बम्स होने चाहिए ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जोश कभी सीधा। फिर इसी तरह से आप देखिए, इसमें एक चीज़ हिल्म के अंदर आती है, जबर और तशद्दुद ना बरते। मानो गन पॉइंट पे निकले तुम्हारी दाढ़ी, सुबह का इंतजार नहीं कर सकती, अभी तुम्हारी दाढ़ी एक एक बालिश की हो जाए, नहीं होगा। ये सख्त चीज़ें नहीं अच्छी, तशद्दुद नहीं बरतना। करें क्या? सब्र और हिम्मत को अपनाएं। ये सारे मैंने बताया था कि इन 4 चीज़ों में सब कुछ आएगा। दाई में सब्र होना चाहिए। आपको अपने मियाँ से एक बात मनवानी है, सब्र कीजिए। आप अपनी बीवी को एक अच्छे रंग रूप में लाना चाहते हैं, ज़रा सब्र कीजिए। आप क्यों इतने सख्त हो गए? कभी नहीं वो किसी दीनदार से शादी करेगी आपके बाद, कि दीनदार इतने सख्त होते हैं, रखो इनको अपने पास, मुझे बस नॉर्मल चाहिए। फिर लोग कहेंगे लिबरल, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से मुझे नहीं शादी करवानी है अपनी बच्ची की, मेरी पहली बच्ची की शादी वो बहुत सख्त निकला। देखिए एक लफ्ज़ याद रखे, रोड़ा ना बने। ये भी मैंने अपने वाले से सीखा था, वो जो दाल में कंकर आता है ना, वो ना बनो, सारी दाल गल जाती है, तुम नहीं गलते, और सारा टेस्ट अगले का खराब होता है जब मुंह में रोड़ा आ जाता। दीन के नाम पे कंकर ना बने, खुदा के लिए नमक की वो डली ना बने कि जिसके मुंह के नीचे का सारा टेस्ट खत्म हो, और ना फिर चीनी की डली बने कि इतना ही मीठा हो दे के कड़वा लगे। मिक्स्ड, आप कोई भी खाना बनाए तो खाने में नमक मिक्स हो जाए तो मजा आता है ना। और कभी चावलों में डालना भूल गए तो पक्के हुए चावलों पे चम्मच डाल दें तो पता है इन पे क्या होगा, सबको पता लग गया। एक चम्मच में सारा नमक होगा और दूसरी फीकी होगी। ये दीन नहीं है मेरी नज़र में। दीन आपके अंदर रच बस जाए, जैसे वो मैरिनेट नहीं करते चिकन को, मीट को, सिरके, नमक, मर्चे डाल, उसको पूरा मैरिनेट कर दीजिए बोनलेस। हेल्म ये है कि आप लोगों में बैठें और लोग का अनकंफर्टेबल ना फील करें, चादरें ना ठीक करें, दुपट्टे ना ठीक करें, और आपको देखकर फलां आ गया, सीधे हो जाओ, चुप चुप, ऐसा नहीं रवैया होना चाहिए आपका। और ऑपोजिट भी ना हो कि लोग आपके आने को नोटिस भी ना लें। हलीमी जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको ये मिल जाए। अल्लाह के नबी ने तो इसके ऊपर इतना बोला है कि सुबहान अल्लाह, इल्म जल्दी आता है, हिल्म में देर लगती है। वही बात, पुराना कपड़ा, जब इल्म हंड जाता है ना तो हलीमी आती है। शुरू में आप कुरान पढ़ के बैठे, सबसे पहले आपको लगता है मैं काफिर, मैं मुनाफिक, काफिर ना भी आए ना, हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं दोजखी, हाय मैं बुरी। ये जो पहले 2-3 पारों में स्टूडेंट बिल्कुल हवनक रहते हैं ना, उसकी वजह ये कि हर रोज़ अपने ऊपर पड़ता है, और ख़ास तौर पे सूरह बकरा का दूसरा रुकू, वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिउनल्लाह। हर बात में आप कहते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, धोखा भी मैं देती हूँ, मेरे से अभी झूठ भी नहीं छूटा, मैं ये भी करती हूँ। फिर ये पहले दर्जे पर थोड़ी सी बंदे को होती, कई तो उस पर छोड़ जाते हैं, बहुत छोड़ जाते हैं, कहते नहीं हमसे इतनी हैवी डोज नहीं ली जाती। वही बात है ना, चिकन के अंदर सिरका और नमक डालें तो चिकन को दर्द तो होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सारी खराब, मैं मुनाफ़िकों में रहती हूँ, नाम लेते हैं मेरा मुशहर मुनाफिक। यानी एक हस्बैंड ने किसी की शिकायत लगाई कि ये मुझे कहती है तुम मुनाफिक हो क्योंकि तुम ईशा और फजर नमाज नहीं पढ़ते, और हदीस में आता है ईशा और फजर की नमाज मुनाफिक को भारी लगती है। जी कौन सी तबलीग की आपने? एक याद रखे बात, देखिए मैं आपको मार्केटिंग का असूल बताऊं, हलीमी समझ आ जाएगी और इसमें सब आ जाएगा। मार्केटिंग की जुबान में कहते हैं हाउ मैनी कस्टमर्स डू यू हैव, आपकी दुकान पे एक दिन में कितने कस्टमर्स आए, ये नहीं है आपका हासिल, ये बताइए हाउ मैनी रिपीटेड कस्टमर्स आर कमिंग। आपकी दुकान पे कोई एक दफा आए और दोबारा उसका आने को दिल करे, ये है आपकी अचीवमेंट। पहली दफ़ा लोग ऐसे ही आ जाएंगे, नए शिफ्ट हुए आगे, पता नहीं था आगे, जो दोबारा आपके पास आए वो आपका है। और मुझे खौफ आता है इस बात से, मैं हमेशा अपने साथियों को यही कहती हूँ, आपकी किसी गलती से कोई इस जगह आके ना जाए, जो नहीं आया ना अल्लाह उसको ले आएगा, लेकिन जो आके चला जाए। और आप इसको देखिए कि आप कोई टेलीफोन कंपनी को लें, 1 महीने के बाद आप छोड़ दें उनको। अमेरिका में ऐसा हुआ, बिजली की कंपनी थी हमारे पास, तो उसको स्विच करके दूसरी ले ली इन्होंने, तो हमारे घर फ़ोन आया, उधर ही जहाँ भी थे हम, तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ वी हैव अ $5 वाचर फॉर यू। पहले वो लालच देते हैं ताकि हमारा फ़ोन बंद ही ना कोई कर दे, और यू नीड टू जस्ट गिव अस अ सर्वे, वाई डिड यू लेफ्ट अस, हमें क्यों छोड़ा है। यकीन करें मैं आपको अब जो बात बताने लगी हूँ ना, शायद मुझे बतानी भी चाहिए कि नहीं, तीन की जगह पे आपके पास कोई आए, कुछ दिन आए, कुछ हफ्ते आए, महीने आए, या ऐसे ही आए, चेस हिम और हर, अब दोबारा क्यों नहीं आ रहा, ज़रूर पूछिए जाके, आंटी जी आप आती थी अब क्यों नहीं आ रही, सिस्टर आप तो थी आप शुरू में, अब क्यों नहीं आई। और कभी कभार है लोगों के कॉन्टैक्ट सिर्फ इस सोच से भी लिया करें कि इस बिरु सा बिरु व रा भी, तो जो आता आता छोड़े वो तो बड़ा ख़तरनाक है। देखिए छोड़ना ऐसे ही है जैसे तल्लाक, खानदान में एकदम हाथ बटता है ना कि जब एक मियाँ बीवी अलग होते हैं, पड़ता है कि नहीं, बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया, बहुत धूम पड़ती है, आप सब समझ गए ना, हम रिश्तों की डोरियों में बंधे हुए लोग हैं। कोई किसी को जब छोड़ता है तो देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रीज़न। आप अगर एक अच्छी दाइया है ना तो दुआ कीजिए कि ना आपको कोई छोड़े ना आप किसी को छोड़े। ज़रूर लोगों से पूछे वाए हमें छोड़ा क्यों, छोड़ो तो छोड़ने की वजह बता के जाओ, और अगर छोड़ना नहीं तो फिर जमे रहो। बात समझ गए, तो हिल्म क्या है, कोई आपको छोड़े ना। नफ़्स सलम के बारे में अबू सुफियान ने एक गवाही दी थी निजाशी के दरबार में, निजाशी ने पूछा था ये बताओ एक दफ़ा जो मोहम्मद सल्लम की बात सुन लेता है फिर उसको छोड़ता है, पर नहीं उसको नहीं छोड़ता, कहने लगा फिर ये हक है, हक की ये पहचान है। हाँ बीच में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, तो याद रखिए बहुत सारे जम्प्स आएंगे, बम्प्स आएंगे, जो जाए वो बता के जाए। कुरान में 10वें पारे का पहला रुकू अल्लाह कहते हैं मन हलका हलका अम्बैशिना, मोमिन कौन है, मरता भी है तो दलील के साथ मरता है। और वो दलील शहादत की होती है, और जीता भी है तो मन का ना है, जियो तो दलील से, जियो मरो तो दलील से। लोगों को बीच में हैंगिंग अराउंड करके नहीं छोड़ना। तो वापस आ जाइए इस बात पे कि जब दाई दीन इस दर्जे पे कंसर्न होगा, एक एक बंदा कीमती है, तो मान लीजिए आप में हिल्म है, लोग परवाह नहीं करते, छोड़ें आपको क्या लगे। मेरे अक्सर साथी जो मेरे माशाल्लाह हमारे सीनियर से मुझे कहते, सासा भूलती नहीं है। मैं कहती मैं नहीं भूलती, नाम उंगलियों पे लिखे होते हैं, मैं जब आऊँ उसका क्या हाल है, वो किधर है, वो सासा वो तो अब कितने साल से आते भी नहीं। कोई माँ अपने बच्चों को नहीं भूलती, मैं नहीं भूलती। वो भूल जाए उनको जो भी हो, ना पढ़ने आए लेकिन बंदा मिलता तो है। देखिए रिश्ते तो खून के होते हैं ना, तो इल्म का रिश्ता होता है ना, हिल्म अंदर आएगा ना तो आप एक एक बंदे के लिए पर्सनली फील करेंगे। यू विल डू दिस। कल एक मैसेज आया मुझे, हर मैसेज जो आता है वो मैं आगे फॉरवर्ड ही करती हूँ सारा सारा दिन, उसके उसके उसको इसके इसके, लेकिन कल एक ऐसा मैसेज था जो मेरे लिए बड़ी, मेरी क्लोज है, मेरी फैमिली की सिस्टर है वो, मुझे बहुत प्यार है उनसे, डायरेक्ट उनका मेरे पास फ़ोन आ गया। मैंने कम से कम 1 घंटे के करीब उनसे बात करके उनको गाइड किया, और उनको मैं अब चेस कर रही हूँ कि किसी लाइन पे वो खड़ी हो जाए, बिकॉज शी इज़ माइन, वो मेरी है, उसको मेरे इस पे लाड है, प्यार है कि मैं उसकी रिलेटिव हूँ। तो मेरे अंदर हिल्म होना चाहिए, मैं को मैं इतनी मस्त हूँ, और उस वक्त मैं सर से बाल तक बिजी थी, साथ काम भी कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसका हक है कि उसने मुझे कहा, मैं तो अपने सारे खानदान को बुलाऊं, तो ये तो आ गई है, नहीं समझ रहे। हमेशा अपने अंदर आजिज़ी लाए, हिल्म के आपकी आवाज़ से पता चलेगा कि आपने हमको बड़ी चीज़ ना समझे, शोए ना मारे, कोई फरलाटियाँ ना मारे, क्या हम बड़े रईस होते हैं जी दीन के नाम पे। जद्दी पुश्ती आलिम है जी, खानदान मेरा आलमों का है, और मेरे खानदान में 70 हाफिज है, और उन 70 में से कोई 7 ने तो मेरी सिफारिश करनी है, और 100% कह रही हूँ मैंने जन्नत में जाना है। हिल्म आपकी आवाज़ से दिखता, अकड़ नहीं होनी चाहिए। याद रखिए इस पे वक्त लगता है। हलीम कैसे पकती है, कई लोग कहते हैं हलीम नहीं कहना चाहिए, उसको दलीम बोले, जो भी कहना कह ले, आई डोंट माइंड। आराम से पकती है, हल्की आंच पे पकती है, उसको घोटना पड़ता है, सब कुछ डाल दें और घोटे ना तो हलीम का मज़ा नहीं आता। दाल अलग, गोश्त अलग और चावल अलग, हलीम देती। जब आपका इल्म पुराना होगा घुलेगा इंशाल्लाह। और नबी में हलीमी थी, लिखिए रेफरेंस सूरत आल इमरान 159। तीसरी दफ़ा ये मैं आपको आयत कोट करा रही हूँ बगैर रेफरेंस के, पहले बात की अब रेफरेंस लिखें। फ़बिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ये लिन्त लफ्ज़ है असल में हलीम, ला नल यलीनु, हरूफ लीन क्या होते हैं, नरम पड़े, यही वही लफ्ज़ है लीन, और इसी से शायद लॉन है उर्दू की। लीना किसको कहते हैं जी, खजूर का वो खोशा जो दरख्त पे नया नया उगता है, नरम गोशों को कहते हैं। तो नरम दिली और सख्ती ना आपके अंदर आए। सूरह ताहा नोट कीजिए 43-44। फिरौन की तरफ हजरत मूसा को भेजा जा रहा था, और क्या कहा जा रहा था, फकूला लहू कौल लय्यिना, आप उसके पास जाइए और उसको नरम बात कीजिए, लल्लहु यतज़क्करु, शायद वो नसीहत ले ले और यक्षा या वो डर जाए। और अल्लाह के नबी की बहुत प्यारी सही रिवायत नोट कर लें कि अल्लाह जो शख्स मेरी उम्मत के किसी काम का जिम्मेदार बनाया जाए और वो इनके साथ नरमी का सलूक करे, तो तू भी इनके साथ नरमी का सलूक कर। एज अ GPA, एज अ क्लास इंचार्ज, एज अ कोर्स एडमिन, आपको अपने साथियों के साथ नरमी का मामला करना है। नरमी से मुराद फिर वही नहीं है कि रूल तोड़ने हैं, जुबान से नरमी। आपको बताइए नए नए बच्चे हैं, इनको पेंसिल पकड़ कर सिखाएं, आपके अंदर ये दर्द होना चाहिए कि ये नया बच्चा है, तर्जमा कैसे याद कराएं, कर करके बताएं। आप तजवीद कैसे उनको बच्चों की तरह दोहराई करनी कराइए, आप रीकैप कराते वक्त दर्द रखिए कि एक एक लफ्ज़ जो बोला गया मैंने इसको सवाल जवाब में इनके सामने डाल देना है, ताकि इनको समझ आ जाए ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को आपसे जोड़ेंगे, हमारे सामने गवाहियाँ आती हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं जो हमने आपसे पढ़ा वो तो पढ़ा, लेकिन जो हमारे कोर्स एडमिन थे ना, हम उनका हक नहीं दे सकते, हमारी GPA का हम हक नहीं दे सकते, जिन्होंने हमारे इतने लाड नखरे देखे। आप कहते हैं आप नहीं आए, चले जाइए जी, आपकी ग्रुपिंग मिस हो गई, नहीं कर लीजिए बाद में, कुछ नहीं होता। नए नए लोगों को रुख्सत देनी चाहिए, उनको फ़ोन पे ले लीजिए, कुछ कर ले, कुछ दिन तो रुख्सत दें। टेस्ट नहीं दे सकते कोई बात नहीं, बैठो थोड़ा तो लिखो, औज़ु बिल्लाह का ही लिख दो तर्जुमा, यानी हमेशा आने वालों को वेलकमिंग दिखें, क्योंकि दीन से भगा देती है चीज़, दीन से तशद्दुद, सख्ती, नादानी, जहालत, तकलीफ दे बातें, सख्त अंदाज लोगों को दीन से भगा देता है। आप हलीम उत्तबा बनिए, साबिर व शाकिर हों, नरम दिल नरम जुबान बनिए, आसान बातें करें, ये भी हलीमी में आता है, मुश्किल बातें ना करें, मुश्किल लफ्ज़ ना बोले, उम्दा कलाम हो, क्या आपकी बातें सुनने वाले के दिल पे जाएं, फिर दावत और तबलीग अगले को भी अच्छी लगेगी। دل کی زمین کو پہلے ہموار کیجئے دعوت کا اثر آئے، اور پھر وہ آپ کا شکر گزار بنے گا، اور انشاءاللہ پھر خیر ہوگی، اور اس کے بعد ہے پھر عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ ہر بات کا، ہر ممکن۔ دیکھیے آپ میں فرشتے نہیں بن سکتے، فرسٹ تھنگ ہے، اور آپ کو مجھے شیطان بھی نہیں بننا، ہم اس کے بیچ میں رہیں گے اور ہم انسان ہوں گے۔ پہلی دعا جو انسانیت کو سکھائی گئی تھی وہ توبہ کی دعا تھی، اور توبہ کی جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد، تو گناہ انسان کی سرشت میں ہے، کرتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پھسلتا نہیں ہے لیکن پاؤں سلپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ عمل کیا؟ جو پڑھوں اس پہ عمل ہو، جو کہوں اس پہ عمل ہو، جو سنوں اس پہ عمل ہو۔ سورہ صف آیت 2 اور 3 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ تم وہ نہ کرو جو تم کہتے ہو۔ اور یہود کی کیا خرابی تھی؟ سورہ بقرہ 44، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اور اللہ کے نبی کی ایک بہت خوبصورت روایت ہے، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلیں گی، وہ ان کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اس طرح آپ نے بتایا، اور اہل جہنم وہاں جمع ہوں گے اور پوچھیں گے اسے کیا ہو گیا، ارے بھائی تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو روکتا تھا مگر خود نہیں روکتا تھا، مگر خود اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ تو پرپسلی گناہ نہیں کرنے، پلانڈ گناہ نہیں کرنے، مجبوریوں کے نام پہ گناہ نہیں کرنے، رسم و رواج کے نام پہ گناہ نہیں کرنے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پھر عمل کی دن بدن توفیق دے گا۔ اور یاد رکھیے عمل بھی وقت کے ساتھ پختہ ہوتا ہے، تھوڑا کر لیجئے کل زیادہ ہوگا، آگے سے آگے چلتا جائے گا، بہتر ہوگا، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ جمع بھی دیتا ہے۔ دعا کیجئے، نماز کے بعد کی دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر دے، کس بات پہ؟ رب اعنی علی ذکرک، تیرا ذکر کروں، و شکرک، تیرا شکر کروں، اور حسن عبادت، اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھیے، عمل کرتے رہیں، اور ان چیزوں کے بعد آپ کو جو ملے گا وہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ ہم جتنا بھی سیکھتے جائیں، میں چند نام لے لیتی ہوں صرف لسٹ پوری کرنے کے لیے، تاکہ اگر ہم اس پہ زیادہ بات نہ بھی کر سکیں تو ایک لسٹ تیار ہو جائے کہ ایک دائی دین کی زندگی میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے، اور اس کی شخصیت کیسے چھوٹے چھوٹے پزلز ہوں گے۔ علم کی بات کر لی، فہم و فراست کی بات کر لی، موقع محل سے بات کرے، بندے کو دیکھ کر بات کرے، دانش اور خلق اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق جیسی تو کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے، علم ہے نہیں ہے آپ کے پاس، اخلاق ہوگا نا تو آپ مل کر دونوں بیٹھ کر کٹھے پھر بھی سیکھ لیں گے، اخلاق برا ہوگا نا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ پھر اگلا پوائنٹ نکلی قابلیت کے مناسب طبقات کا انتخاب، بڑی اہم بات ہے، بات تو اس پہ مجھے گھنٹہ کرنی چاہیے لیکن ایک دو منٹ کر لیتی ہوں۔ آپ کس طبقہ فکر میں تبلیغ کرنے گئے ہیں؟ اپنی قابلیت پہلے پہچانی ہے۔ ہر بندہ ہر قسم کے آڈینس میں فٹ نہیں ہوگا، بلیو می، کئی تو آپ کا اتنا مذاق اڑائیں گے آپ رو کے آئیں گے اور اگلی دفعہ کبھی کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ پہلے چوز کیجئے، تین چیزیں تھیں نا وہ بھی پوری کر لیجئے، دائی، پیغام اور مدعو۔ مدعو میں پیچھے بھی بتایا تھا نا مخاطبین کی کچھ صفات، تو چوز کیجئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان پڑھ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ کسی کی میں بات سن رہی تھی اور ایک مبلغ تھے، وہ کہیں درس کے لیے گئے تو پڑھے لکھے اور پوش قسم کے لوگ تھے، تو وہ درس کے لیے گئے تو لوگ سننے کو تیار ہی نہیں، محفل میں بیٹھے تھے لوگ باتیں کری جا رہے ہیں، اور اس دن درس ان کا جو تھا وہ کسی خاص ٹاپک پہ تھا، انہوں نے ایک بار ایکسکیوز می کیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، دوسری دفعہ کیا، تیسری بار کیا، اتنے میں جب دیکھا ڈیڈنٹ ٹیک اینی نوٹس، کہنے لگے ایکسکیوز می آپ کو اس موضوع پہ درس کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ کو مینرز پہ درس سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا حافظ، آپ کو بھی آداب پہ درس سننا ہے، آپ کے ابھی ادب ہی ٹھیک نہیں، میں آپ کو اللہ کی بات سنانا چاہتا ہوں آپ وہ نہیں سن رہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر سب کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کیا، بعض لوگ آپ کو اتنا لیٹ ڈاؤن کریں گے، اور پارٹیوں میں फ्रेंड्स में बातें करती जाएंगी, नहीं अभी तो तिलावत चल रही है, अभी तो ये बैठी हैं, अच्छा बातें हो रही हैं ना, तो लोग कई नए लोग कहते हैं आप शुरू कर दें, ये खुद ही चुप हो जाएंगे। मैं तो नहीं करूँगी, आप मुझे क्यों दीन की बदनामी का जरिया बना रहे हैं, पहले ये चुप करेंगे फिर मैं बात करूंगी। तो आप पहले चेक कीजिए आपको समझ होनी चाहिए और कहाँ क्या बात करनी है। बीसियों बार नहीं सैकड़ों बार हुआ होगा पिछली जिंदगी में, सोच के कुछ और जाती हूँ, कह के कुछ और आती हूँ। वजह माहौल की मुताबकत नहीं होती। अब तो मछला हर चीज़ के फ्लायर रिलीज्ड और इवेंट्स पे और लाइव ब्रॉडकास्ट वाले तैयारी करते हैं, टॉपिक मैं नहीं बदल पाती, मैं उसका स्टाइल चेंज करती हूँ। बाद में मैंने बहुत एकेडमिक स्टाइल पर देना होता है, 30 पॉइंट देने हैं, मैं नहीं देती, उसको रोक लेती हूँ, मैं क्यों ज़ाया करूँ अपना इल्म इधर, इन्होंने को लेना। मैं उनको पॉइंट्स दूंगी ना, उनके कागज़ ना कलम कुछ, वो आई लाइनर और पेंसिलें निकाल के बाद वो पॉइंट लिख रही होती हैं, तो क्यों मुश्किल में डालें। तो हमेशा देखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह हिकमत के अंदर फिर आ जाता है, फिर आपकी सीरत और किरदार इस बात की गवाही दे कि आप अल्लाह के एम्बेसिडर्स हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके मेरे लिए, कि दीन की बदनामी का जरिया ना बने कभी भी। अल्लाह से ये दुआ भी कर लें कि अल्लाह मेरे ज़रिए दीन को इज्जत दे, मेरी वजह से दीन को बदनाम ना करना। ये ऐसी बड़ी खयानत हम कर देते हैं, जान के नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन बस वो हमसे हो जाती है, हम क्या करें, हम सब कमज़ोर हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत रखा करें अपनी ज़िंदगी में कि मैंने लोगों को हमेशा दीन की बड़ाई देकर आनी, अपनी नहीं। आप कोई अपनी भी बात सुनाते हैं ना, हर बंदा सुनाता है अपनी बात अपने वाक़यात, तो उसमें दीन की इज्जत हो कि देखे मैं दीन पे आई तो मुझे ये मिला, देखे दीन ने मुझे ये दिया और दीन पे आए तो ये मिलता। इस तरीके से घुली मिली बात करें। कुछ लोग कोरे कागज़ हैं, ये वाइट पेपर है ना, इस तरह के आपके पास आएंगे, कभी किसी क्लास में नहीं गए, कोई इल्म की परछाई नहीं पड़ी, स्लीवलेस भी है, चेहरे रंग मोहरे से लग रहा है कि ये बिल्कुल नौमलूद बच्चा है हिदायत के एतबार से। एक आपका मुखातिब या ऑडियंस या स्टूडेंट वो बनता है आपकी क्लास या लेक्चर में, ऐसा बंदा बैठा जिसने आज तक दर्स सुना ही नहीं, एक ऐसा पहले से कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है, बात समझ गए, किसी एक क्लास में चले जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं कुछ जानते हैं, ये सेकंड पेज है, ठीक है। एक थर्ड ले लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, खूब दीन के साथ ताल्लुक़ है, मंझे हुए, किसी ग्रुप से काम भी साथ मिलकर कर रहे हैं, किस पे लिखना आसान है, मुझे चॉइस मिले। अगर कोई एक साल का कोर्स ऐसा आया कि आई कैन चूज़ द स्टूडेंट्स, जिसकी मैं ज़रूरत कभी नहीं कर सकती, तो मैं हमेशा उनको चूज़ करूँगी जिन्होंने कभी नहीं कुरान पढ़ा, मेरे पास वो आए और मुझे खुशी भी उनकी होती है। मेरा क्रीम ऑडियंस वो है जिन्होंने कुछ नहीं सुना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए।